वसुदेवस्तुतं देवं
कंसचारुरमर्दनं वसुदेवस्तुतं देवं कंसचारुरमर्दनं
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
अजोऽपि संनाव्यात्मा भूतान मित्रो पिशन्
अजोऽपि संनाव्यात्मा
भूतानामीश्वरोऽपिशन्
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय आत्ममायया
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानी भवति भारत
यदा यदा हि धर्मस्य
ग्लानी
भवति भारत
अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम्
धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे
धर्मसंस्थापनार्थाय
जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः
कर्म च मे दिव्य
मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः
चत्वादेहं पुनर्जन्म नेति मामे ईशोऽर्जुन
यद्वादे हम पुनर्जन्म
नैति मामेति सोऽर्जुन
वीतराग
भय क्रोध
मन्मया मामुपाश्रिता
वीतराग भय क्रोध मन्मया मामुपाशिता
महवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता
महवो ज्ञानतपसा
पूता मद्भावमागता
वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं
वसुदेव सुतं देवं कंसचारुरमर्दनं
देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं
देवकी परमानंदं कृष्णं Krishnam Vande Jagat Guru.
Krishnam Vande Jagat Guru.
Krishnam Vande Jagat Guru.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram.
Sri Ram Jai Ram Jai Jai
Ram.
Dheyam Sada परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भगवत तत्व रहस्य को ठीक ठीक समझने के लिए एक कहानी सुनाते हैं। अब ये घड़ी हुई है तो पता नहीं, लोकोक्ति है तो पता नहीं, जो भी है कथा का रहस्य बड़ा विलक्षण है। एक पंडित जी थे, उनका लड़का बहुत उद्दंड था, बदमाश था, उसमें झूठ कपट चोरी आदि सभी अवगुण थे। उसके पिता के पास बहुत रुपए थे, वे शिव के उपासक थे। उनके पास शिवजी का एक मंदिर, अपना मकान और बगीचा थे। इसके अलावा उनके पास 1,00,000 रुपए नगद थे और जगह जमीन आदि जो था वो सब करीब 1,00,000 का स्टेट था। पंडित जी ने विचार किया कि मेरे मरने पर ये लड़का मेरे धन को बर्बाद करेगा, क्योंकि ये इस धन का पात्र तो है नहीं, इसमें अवगुण बहुत है, किंतु ये जमीन और ये संपत्ति तो रहनी चाहिए, बिकनी नहीं चाहिए। तो उन्होंने मंदिर का, जमीन का, सबका एक ट्रस्ट बना दिया। परंतु 1,00,000 रुपए जो रोकड़ में थे उनका क्या करें, तो उसको दिया तो नहीं जा सकता था। उन्होंने इस रुपए को बड़ा गुप्त रखा, अपने लड़के के बुरे आचरणों को देखकर वे बहुत दुखी रहते थे। जब वो मरने लगे तो वो रोने लगे, तो लड़का बोलता है, पिताजी रोते क्यों हो? बोले, तेरे में जो दुर्गुण दुराचार है उसको देखकर रोता हूं, क्योंकि मैंने बहुत परिश्रम से संपत्ति बनाई और तू नष्ट कर देगा। तो लड़के ने कहा कि ये तो मेरे स्वभाव का दोष है, मैं क्या करूं, मेरे दुर्गुण दुराचार दूर होना मुश्किल है, आप कोई ऐसा उपाय बता दो उसको मैं काम में लाने की चेष्टा करूं, और तो क्या कर सकता हूं। तो पिताजी थे पढ़े लिखे, उन्होंने एक संस्कृत में मंत्र लिख दिया। उस मंत्र का अर्थ पिताजी ने इस ढंग से लिखा कि वो तो समझता नहीं था। और पिताजी ने कहा कि देखो तुम रोज स्नान करो ना, तब इसका एक बार पाठ कर लिया करो, और जोर जोर से बोल के करना, छिप छिप के मत करना, जोर से एक बार करना। कोई महात्मा यदि आपको मिल जाएगा तो वो इसका सही अर्थ जान लेगा, तुमको बता देगा, तेरी दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तो महाराज बहुत अच्छी बात है, बताओ वो मंत्र। उन्होंने वो मंत्र बता दिया और अपने सामने कंठस्थ करवा दिया, तो हो गया कंठस्थ। उस मंत्र का अर्थ ये था, मेरा लड़का बड़ा दुराचारी है, जब ये सदाचारी बन जाए तो मेरा जो गुप्त धन है उसको एक महात्मा बता देंगे। मैंने 1,00,000 रुपए शिवजी के मंदिर की गुंबज में चैत सुदी एकम के दिन 12 बजे रखे हैं। इसका जो रहस्य है वह वो विद्वान महात्मा समझ लेगा, वो जाने और वो इसको बता देंगे। परंतु वो भी इसको तभी बताए जब ये लड़का सुधर जाए, तब बतावे, नहीं तो नहीं बताना, उनको दोष लगेगा। तो कहा अच्छी बात है, पिताजी मर गए परंतु वो रोज पाठ करता था। उसकी संपत्ति मंदिर को छोड़कर प्राय प्राय नष्ट हो गई, और वो जुआ खेला करता था, सट्टा फाटका करता था, उसमें सब पैसा बर्बाद हो गया। पहले उसमें चोरी वगैरह की, हिंसा की और नहीं खाने लायक चीजों को खाने की बहुत बुरी आदत थी, किंतु जब रुपए खत्म होने लगे तब क्या करें, तो कई आदत तो बंद हो गई, रुपए बिना वो आदत चलती नहीं, क्योंकि जुआरी तो पैसा होगा तब जुआ खेलेगा। अब जुए की लत तो है और पैसा है नहीं, तो वो दुखी हो गया। गांव में वो किसी से उधार मांगे तो उधार देवे नहीं, भीख मांगे तो भीख देवे नहीं। ऐसे करके वो एक दिन उदास होकर रो रहा था, और जब स्नान का समय आया तब पिताजी ने कहा था उस स्नान करते करते वो मंत्र बोले। तो जब वो स्नान कर रहा था, पास में एक अच्छे विद्वान महात्मा वो मंत्र सुन रहे थे। वे महात्मा उससे बोले, ए इधर आओ, ये मंत्र तुम कहां से बोलते हो? कि मेरे को मेरे बाप ने सिखाया। तो तुम इसका कोई अर्थ जानते हो? अर्थ वर्थ नहीं जानता, मेरे पिताजी ने कहा मरते समय तुम श्लोक का पाठ कर लेना और इसकी तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। पर दरिद्रता दूर कब होगी? जब तुम पहले दुराचार को छोड़ोगे, तब कोई महात्मा मिलेंगे, वे इसका रहस्य समझाएंगे। महात्मा बोले, कोई तुमको महात्मा मिला आज तक? तो नहीं मिला। तो तुम इस मंत्र का रहस्य जानते हो कि नहीं जानते? महात्मा ने कहा, मैं समझ गया, इसका जो सार है मैं तुमको बतला देता हूं। कि महाराज बताओ, बड़ी कृपा होगी, सुनो। तुम्हारे पिता के पास रुपए थे क्या? कि महाराज कोई कम थोड़े थे, 1,00,000 रुपए नगद थे उस जमाने में, 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए नगद थे। तो मरते समय तुमको नहीं दिया? कि नहीं दिया महाराज। बोले, क्यों नहीं दिया? कि पता नहीं क्यों नहीं दिया, बतलाया भी नहीं। कि नहीं बतलाया। महात्मा जी कहने लगे, देखो भाई, तुमने जो मंत्र बोले उस मंत्रों से मुझे कुछ लगता है। ये क्या, आपको क्या लग रहा है, आप बताओ। तो बोले, तुम्हारे पिता की आज्ञा है कि जब तुम योग्य बन जाओ, दुराचार छोड़ो, तब इसका अर्थ बताएंगे। तो तुम इसका अर्थ क्या समझे महाराज? मैं तो एक बात जानता हूं कि क्या, मैं इसका अर्थ ये समझा था कि हमारे शिव जी का मंदिर है, उसके ऊपर एक गुंबज है, उसमें पिताजी ने 1,00,000 रुपया रखा था, तो मैंने देखा कि गुंबज को तोड़ाओ, तो मैंने तोड़ा दिया और उसमें एक पाई भी नहीं मिली, मैं तो यही अर्थ जानता था। फिर गुंबज को बनवा दिया, हाँ गुंबज को मैंने वैसा का वैसा बनवा दिया कि बड़ा अच्छा किया। कैसा बनाया कि जैसा था, जितना ऊंचा था जैसा था वैसा का वैसा बना दिया। बोले ये अच्छा किया, यदि गुंबज में होता तो महाराज कुछ मुझे मिलना चाहिए था। कि भाई तुम समझते ही नहीं, तुम ही समझो, यदि गुंबज में होता इसका अर्थ ठीक होता तो रहस्य और तत्व को समझाने की क्या बात थी। तुमको कहा ना कि मेरे मंत्र का रहस्य और तत्व कोई समझाएगा, कोई बात कहनी अलग है और बात में रहस्य निकलना अलग बात है। मैं तुम्हारे मंत्र का रहस्य और तत्व जानता हूं। वो पैरों में गिर गया, कहने लगा महाराज अब तो बताओ, मैं बहुत दुखी हूं, सिर पर ऋण भी हो गया, संपत्ति भी नष्ट हो गई और मंदिर का पिताजी ट्रस्ट बना गए, वो भी धर्मार्थ ट्रस्ट बना गए, मंदिर तो धर्मार्थ ही होते हैं, मेरे पास तो कोई आजीविका का साधन भी नहीं है, लोग मुझे ऋण भी नहीं देते, मेरे आचरण ऐसे हैं, कोई भीख नहीं देता, मारा मारा फिरता हूँ, बड़ा दुखी हूँ। बोले देखो भाई, इस मंत्र की बात तो यही है ना कि तुम दुर्गुण दुराचार छोड़ो। तो बोले ठीक है महाराज छोड़ दूंगा, बताओ कि नहीं पहले तुम छोड़ो। तो ठीक है महाराज, आपको कैसे विश्वास होगा कि 1 साल के बाद मैं तुमसे मिलूंगा, 1 साल के बाद मैं तुमको फिर मिलूंगा और तब तक तुम प्रतिज्ञा करो कि तुम्हारे अंदर सारे दुर्गुण तुम छोड़ दोगे। कि ठीक है महाराज। अब वो व्यक्ति अपने अंदर जितने दुर्गुण दुराचार थे सब उसने छोड़ना चालू किया। आदमी जब दुर्गुण दुराचार छोड़ने पर उतर आता है तो बहुत जल्दी छूटते हैं। मनुष्य कमजोर होता है कि मेरे से छूटते नहीं, छोड़ने की इच्छा नहीं होती ना, तब तक छूटना मुश्किल है। छोड़ने की इच्छा होने के बाद तो कौन सी बड़ी बात थी। 1 साल के बाद फिर महात्मा जी आए और वो मिला महात्मा जी से कि वाह महाराज बड़ी कृपा की, महाराज मैंने सब दुर्गुण दुराचार छोड़ दिया है, मैं किसी भी वस्तु को, दूसरे की वस्तु को पत्थर के समान समझता हूं और किसी भी स्त्री को माता बहन के समान समझता हूं, कोई भी बात मैं झूठ नहीं बोलता हूं और सत्य बोलता हूं, झूठ में भी अपने कोई कमी रहती है उसको साफ कहता हूं। लोग देखते हैं हम दूसरे की कमी बताने में, साहब हम झूठ नहीं बोलते, तुम्हारे में ये कमी है, तो भाई दूसरे की कमी निकालने में आप सत्यता की बात कहते हो क्या फायदा, अपने अपने अंदर ले हो, अपनी कोई कमी हो उसको साफ कहता ना, वो साफ कहने वाला होता है। तो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मेरी कमजोरी होती है उसको भी उसी को बता देता हूं साहब, चोरी नहीं करता हूं, चोरी नहीं करता हूं, क्योंकि किसी भी पराई वस्तु को अपनी मानना या अपनी मानना ही चोरी हो गया। मैंने मद्य पान मांस भक्षण जुआ आदि सब छोड़ दिया, तो तुम क्या करते हो, अब मुझे खूब खाली समय मिलता है भगवान का भजन ध्यान करता हूं और ब्राह्मण तो हुई, इधर उधर से कुछ भीख मांग करके ले आता हूं, उधार में अब मैंने बंद कर दिया, लोग भी देते नहीं, पर मेरे पर पहले का लिया हुआ ऋण जरूर है, मन में आती ऋण चूक जाए और मेरे धन में अब कोई इच्छा नहीं रही, अब आप कृपा करके मेरे पिताजी का धन बता दो। बोले भाई उन्होंने तुम्हारे मंत्र में एक बात कही है, क्या कि चैत सुदी एकम के दिन बताएंगे। कि अच्छा महाराज, चैत सुदी एकम तो आई, तो चैत सुदी एकम आ गई, तो बोलो महाराज कल चैत सुदी एकम है, कि ठीक है कल तुम मजदूर ले आना, 4 मजदूर, मजदूर को कुली भी बोलते हैं, 4 कुली ले आना, ठीक है महाराज, उनको पैसा तो देना पड़ेगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है, महात्मा जी ने कहा पैसा की व्यवस्था हम कर देंगे। ठीक है महाराज, चार मजदूर को बुला लाया महात्मा जी के, चलो अब तुम्हारा मंदिर कहाँ है? कि महाराज ये चलो ये मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ महात्मा जी घूमे और कुलियों को बुलाया और जमीन खोदने की सामग्री गैती फावड़ा सब मंगा लिया। तो कहा महाराज अब बताओ क्या करना है? कि देखो अब तुम्हारा काम नहीं मेरा काम है, तुम तो पाठ करते जाओ मंत्र बोलते जाओ। उस मंत्र में तो ये बात है ना कि हमारा लड़का दुराचारी है, दुर्गुण से भरे हुए, इसमें दुर्गुण दुराचार न रहे तो जो हमारी संपत्ति है वो कोई महात्मा बता देगा। हमारी संपत्ति मंदिर के गुंबज, जो गुंबज है उसमें चैत शुक्ला प्रतिपदा के दिन 12 बजे रखी है, ऐसा तुम्हारे इस मंत्र में है तो 12 बजने दो। तो फिर 12 बज गई, जो ही 12 बजे तो वे महात्मा जी वो गुंबज की छाया जहां पड़ती थी वो छाया के वहां पर लकीर करवा दी कुलियों से मजदूरों से और कहा अब यहां खोदना चालू करो। अब चार मजदूर लगे हुए थे और वो खोदने का काम चालू किए, चिन्ह पहले ही कर लिया, जो वो छाया पड़ी था सब चिन्ह कर दिया, इतनी इतनी जमीन को खोदना है। खोदे तो 1,00,000 रुपया मिल गया, वो 1,00,000 रुपया मिल गया बड़ा खुश हो गया। उसने कहा महाराज अब ये मेरा ऋण ऋण तो आप माफ करवा दो जिन जिन का है, बाकी आप हमें मतलब नहीं है भाई, तो इन कुलियों को 4 रुपया देना है 4 रुपया दे दो। तो उसने 4 रुपया दे दिया, 1-1 रुपया। महात्मा जी ने अपने पास कुछ नहीं रखा। महात्मा जी ने कहा तुम्हारा और तुम्हारे बाप का पैसा है भाई, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने तो मंत्र का अर्थ बताया है, ये तो हमने आपको कहानी सुनाई। अब आप विचार करो कि ये जीवन में अपने साथ भी घटती है कि नहीं। हम लोगों के बाप हैं भगवान, उनके पास एक संपत्ति है मुक्ति, और हम हैं भगवान के लाडले बेटे जो कि दुर्गुण दुराचारों में फंस गए। अब बताओ क्या करें? संसार का जो राजा होता है उसका तो, संसार का जो राजा होता है उसका तो एक युवराज होता है, परंतु परमात्मा की मुक्ति के तो आप हम सभी युवराज ही हैं। तो उसके लिए अपने को प्रयत्न करना है। तो हम लोगों को जो गीता का भगवान ने उपदेश दिया है इसको हम रोज स्नान करके पाठ तो करते हैं पर इसका अर्थ नहीं समझते, रहस्य और तत्व समझना चाहिए। भगवान कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम और सुरिदम सर्वभूतानाम, 3 बात बोले। इन तीनों बातों को जो जान लेता है वो वास्तव में परम शांति को प्राप्त होता है। हम तो कहते हैं 3 में से 1 बात जान लो शांति मिलेगी। ये कैसी शांति है? ये सांसारिक शांति नहीं है, पारमार्थिक शांति है। तो 3 साधन बताए, 1 से भी सब काम हो जाए फिर बाकी की तो बात ही न्यारी है। तो इसका रहस्य आप लोग जानते हैं कि नहीं? पता नहीं। भगवान कहते हैं कि सब यज्ञ और तपस्या का भोक्ता मैं हूं। इसका अर्थ है कि संसार में जो लोग यज्ञ करते हैं उन सब का अंतिम भोक्ता मैं हूं। जैसे अग्नि में आहुति दी जाती है तो भगवान अग्नि रूप से आहुति ग्रहण करते हैं, अग्नि का भोक्ता मैं हूं, खाता मैं हूं। पितरों को जो पिंड देते हैं, जल देते हैं, श्राद्ध करते हैं तो पितरों के रूप से मैं खाता हूं। अतिथि जो घर में आता है उसको आप भोजन कराते हो तो वो भोजन अतिथि के द्वारा मेरे पास पहुंचता है, उसका भोक्ता मैं हूं। आप अपने परिवार में जिसके प्रति जो व्यवहार करते हो वो सब यज्ञ है, उस यज्ञ का भोक्ता मैं हूं। किसी की सेवा करते हो तो वो सेवा मुझे मिलती है, और किसी को कटु वचन बोलते हो तो वो मेरे पास आता है। किसी का अपकार करते हो तो अपकार मेरा ही होता है। किसी से शत्रुता रखते हो तो वो शत्रुता मेरे से होती है। तो हमारे घर में कोई अतिथि आए तो उसको साक्षात भगवान समझकर उसकी सेवा करने लगना चाहिए। ऐसी खुशी आए जैसे भगवान आ गए हो, अतिथि आ जाए तो ये माने। यदि गीता सत्य है, गीता पर आपका विश्वास है, तब तो आपको अतिथि को साक्षात भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। अतिथि का ही क्यों, जितने आपके परिवार के सदस्य हैं, जिनके साथ रात दिन आपका व्यवहार है, वो सब भगवान के रूप में अलग अलग संबंधों से आए हैं। आप यहां वृक्ष का रूप धारण करके बैठे हो, वाह महाराज, जंगल में चल रहे हो, कोई नीम मिल गया, कोई खेजड़ी मिल गया, ओहो वाह महाराज कैसा सुंदर आपका रूप है, ओहो पीपल वृक्ष आ गया, चलो जल दे स्वस्थ हूं। तो ये सब भगवान का स्वरूप है। विश्वास भगवान की बात पर हमको नहीं हो रहा है, इसी कारण से सब गड़बड़ हो रहा है। तो ये विश्वास करना ये रहस्य की बात है। पढ़ गए यूं भगवान ही है, सब भगवान है, सब भगवान है, पढ़ गए, पर हमारे व्यवहार में जब तक वो चीज नहीं आई तब तक पढ़ने का फल क्या मिला। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार है केशवम प्रति गच्छति। आकाश से आया हुआ जल जैसे नदी के अंदर से आकर के सागर की तरफ ही जाता है, ऐसे ही किसी भी देवता को नमस्कार करो वो भगवान को ही मिलता है। किसी को भी आप प्रणाम करो वो भगवान को मिलता है। तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, दिखने में तो माँ दिखती है, दिखने में तो पिता दिखते हैं, पर वो साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान के ही सब रूप है, भगवान सब में विराजमान है। इसलिए भगवान को छोड़कर के कौन अलग से आ सकता है। यदि किसी का तिरस्कार करते हैं तो भगवान का तिरस्कार है। परहित बस जिनके मन माए तिनकऊ जग दुर्लभ कछु नाही। दूसरे के हित में जो लगा रहता है उसके लिए संसार में कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहते। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रहता। संपूर्ण प्राणियों के हित में जो लगे रहते हैं वे मुझे प्राप्त होते हैं। तो रहस्य समझना क्या है कि हमारे द्वारा जो क्रिया किसी के भी प्रति हो रही है वो भगवान के प्रति हो रही है। हम भूल जाते हैं, हम किसी व्यक्ति के प्रति रखते हैं शत्रुता का भाव, व्यक्ति का स्वभाव देखते हैं, आचरण देखते हैं, अरे उसमें रहने वाले भगवान को देखो। भगवान को देखते ही हमारी वृत्ति बदल जाएगी। सर्वलोक महेश्वरम, हमने सुन तो लिया कि सब ईश्वरों के ईश्वर है, ऐसा बोल देते हैं, परंतु इसका रहस्य समझना चाहिए। रहस्य है कि संसार में भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। इसलिए भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने सब कुछ किया, ऐसे भगवान को एक क्षण भी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे भगवान सबके स्वामी है। जो समय भगवान की स्मृति से खाली चला गया वो हमारे जीवन का सबसे बड़ा घाटा है। भगवान को छोड़कर किसी का भी भजन नहीं करेंगे। योमा मेव मसम मुंडो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारते। आप कहते हैं कि भगवान की स्मृति निरंतर नहीं रहती है, तो इससे सिद्ध यह होता है कि आप भगवान को छोड़कर किसी और चीज की सत्ता मानते हो। तभी तो आप कहते हो कि वहां मन गया और वहां मन गया, क्या वहां भगवान नहीं है। आपका मन जहां भी जाए आप प्रसन्न हो जाओ कि हमारा मन तो भगवान के अलावा किसी में जाता ही नहीं है। भगवान ने कहा द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरे वच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य है। क्षर से अक्षर से उत्तम विलक्षण परमात्मा है वो मैं हूँ और क्षर अक्षर भी मेरे ही है। इसलिए आपका जहाँ भी मन जाता है वो भगवान के वहीं जाता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, इसीलिए कहा कि आप ही माँ हो, आप ही बाप हो, आप ही भाई बंधु हो, आप ही सखा हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही पति हो, आप ही सब कुछ हो, विद्या धन सब कुछ आप ही हो। विद्या माने योग्यता, जो भी योग्यता है उसका सूचक है विद्या। द्रविणम द्रविणम बोलते हैं धन को, वो भी आप हो। ऐसा समझ करके जो चलता है उसको दूसरी चीज की आवश्यकता ही नहीं रहती। और मुझसे बढ़कर दूसरी चीज किसी को समझता है तो फिर वो मुझे क्या समझा। इस तत्व को जो जान लेता है वो वास्तव में सही जानता है। तो इस तत्व को समझ करके, इस गुप्त रहस्य को समझ करके फिर इसी काम में लग जाए। यदि नहीं लगा तो ये रहस्य समझ में नहीं आया, और समझ में आ गया तो अब इस काम को अभी से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उसी को ही भगवत प्राप्ति बोलते हैं, परम पद की प्राप्ति बोलते हैं, मुक्ति बोलते हैं। बोलने की चीजें अलग अलग है, वस्तु एक ही है। यही अपने परम पिता का गड़ा हुआ गुप्त धन है। उस लड़के को उस महात्मा ने पिता का धन बतला दिया और उसके अनुसार प्रयत्न किया, धन मिल गया। धन मिलने में तो विलंब हुआ, कष्ट नहीं हुआ, वर्षों बीत गए, परंतु पिता का धन होते हुए भी बेटे को नहीं मिल रहा था। उस धन के रहस्य को समझने वाला कोई महात्मा आ गया तो तुरंत ही काम बन गया। और तीसरी बात, भगवान कहते हैं सुरिदम सर्वभूतानाम। यहां तो आदमी को बहुत ही ज्यादा विश्वास होना, अरे भगवान हमारे सुरिद है, सब प्राणियों के सुरिद है, सबका भला चाहते हैं, बिना कारण दया करते हैं, बिना कारण प्रेम करते हैं। इसका रहस्य क्या है कि भगवान सब जगह है, जड़ नहीं है, चेतन है। हम लोग जो सुन रहे हैं ये भगवान सुन रहे हैं, जो क्रिया करते हैं हम भगवान देख रहे हैं, वे सर्वज्ञ हैं। इस बात को समझना चाहिए कि बोले हम तो समझ लें। अच्छा समझ लिए तो आपको शांति मिली क्या? कि नहीं मिली तो फिर समझे क्या? भगवान ने कहा ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आप कांटा लगा के देखो, जानते हो तो शांति मिलनी चाहिए, और शांति नहीं मिली तो जाने नहीं। ये तो एकदम सीधी सीधी बात है। इसमें तात्विक बात जानना क्या है कि तात्विक बात ये जानना बड़ा विचित्र है। जैसे कोई एक भिखारी घर घर भीख मांगता है, वो जहां जाता है लोग उसका तिरस्कार करते हैं, धक्का खाता है। किसी ने उसको कह दिया यहां पास में एक बहुत उच्च कोटि के दाता है, उसके घर चला जा, बहुत दातार आदमी है, किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजता। उनके पास चला गया, उनसे मांगने लगा तो वही उसको मिल गया। यही पास में ही घर है, उसमें ले जाकर बतला भी दिया कि ये घर है, यहां मांग ले। फिर क्या भिखारी वही बिना मांगे रहेगा? नहीं, वह सदा के लिए दरिद्रता दूर हो जाए ऐसी मांग पेश करेगा। जो मांगे सही तो देते हैं, तो वो सब अपनी फहरिस्त पेश करेगा, लिस्ट पेश करेगा, मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। फिर क्या वो भूखों मरेगा सड़कों पर? नहीं। तो यहां जो भगवान है वो है सुरिद है, सबको जानने वाले हैं और सबके दाता है। सुरिद जान लेगा तो अपने द्वार पर पड़े हुए भिखारी की वह मालिक रोज संभाल करता है, बिना मांगे देता है। याचना करने पर तो मिले अलग बात है, बिना मांगे देते हैं। ऐसे भगवान को हम सुरिद मान ले कि भगवान बिना कारण दया करते हैं, बिना कारण प्रेम करते हैं, तो फिर भगवान हमसे कब अलग हो सकेंगे? ऐसे भगवान से फिर याचना करने की भी दरकार नहीं रहेगी। हेतु रहित दयालु है वे, हेतु रहित प्रेमी है, उनके समान कोई नहीं है। इससे भी बढ़कर एक बात है कि भगवान हेतु रहित दया करने वाले, हेतु रहित प्रेम करने वाले, इस बात का जब हमको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान में ये बड़ा भारी गुण है, तो सबसे बढ़कर ये गुण भगवान में ही है, तो हम उसी वक्त हम भी सब भूतों के परम प्रेमी और परम दयालु बन जाएंगे। भगवान के गुण जानते ही हम स्वयं वैसे बन जाएंगे। जैसे बिजली में करंट, तार में करंट आता है, उसको छूने से उस आदमी में भी करंट आने लगता है। अरे हमने तो इस आदमी को छुआ था, तार को थोड़े ही छुआ था भाई, तार का करंट तो आदमी में आ गया। क्यों आ गया? कि बिजली फैल गई। ऐसे भगवान के साथ करंट लग जाने से, माने भगवान से संबंध कर लेने पर, भगवान के गुण आप में आने लगेंगे। आपके द्वारा दूसरों की अपने आप भलाई होगी, आप स्वयं जो है दयावान बन जाओगे। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। उमा राम समहित जग माई, गुरु पितु मातुर बंधु कहु नाही। भगवान के अलावा कोई माता पिता गुरु भाई बंधु ऐसा नहीं है जो हमारा इतना बड़ा हित कर सके। जब इस प्रकार हमको ज्ञान हो जाएगा कि भगवान के समान कोई हमारा हितेशी नहीं है, तो फिर बताओ भगवान को छोड़ करके सांसारिक जड़ पदार्थों से, भोगों से कौन प्रेम करेगा? फिर भी यदि कहीं संसार में छिपा हुआ प्रेम है तो अभी भी समझने में कमी है, ये रहस्य की बात है। भगवान के तत्व रहस्य को प्राप्त होता है तो हम भगवान के हेतु रहित प्रेमी नहीं हुए। हम दूसरों से प्रेम करते हैं, हमने भगवान के तत्व को नहीं समझा। दुनिया में, हे प्रभु, दुनिया में सब स्वार्थ के मित्र हैं, मतलब के साथी हैं। जब तक मतलब है तब तक सब है, मतलब निकल जाने के बाद कोई नहीं है, एक आप हो आप। इस प्रकार से भगवान में जो प्रेम होता है वो बड़ा विशुद्ध प्रेम होता है। भगवान के प्रेमी में, भगवान के प्रियतम में जो लक्षण बताए, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एवच है। भगवान को वो प्यारा लगता है जिस प्राणी में किसी के प्रति द्वेष का भाव नहीं है, किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहता है, जो सबका भला चाहता है, जो किसी के साथ वस्तु में और मैं ममता नहीं रखता, मित्रता रखता है लेकिन ममता नहीं रखता, किसी से कोई स्वार्थ नहीं रखता, हेतु रहित प्रेमी है, किसी बात को लेकर अहंकार नहीं होता, सुख और दुख के अंदर विचलित नहीं होता, कोई हमारा कितना भी अपराध कर दे पर उसको हृदय से क्षमा कर देता है, उस अपराध को याद भी नहीं रखता है, जैसे कोई 6 महीने का या साल भर का लड़का अपने पिता की गोद में बैठा हुआ पिता की पूंछ पकड़कर खींचता है तो क्या पिता उसको दंड देते हैं, अपराध मानते हैं? पिता कहते हैं बेचारा जानता ही नहीं, बच्चा है, पिताजी को आनंद आता है। न तो उसको माँ मारती है न पिता उसको डांटते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भाई ठीक नहीं है, ये बच्चा जानता नहीं, इसको मारना पीटना ठीक नहीं है। साल भर का लड़का तो है, वो क्या समझे अभी, तो उस अपराध को पिता अपराध नहीं समझते। ऐसे ही कोई वैद्य है किसी रोगी को देखने जाए और रोगी एकदम सन्निपात में है, पागल है, उसमें वात पित्त कफ तीन दोष खूब बढ़ गया है, वो जोर जोर से प्रलाप करता है, न बोलने वाली बातें बोलता है, और वैद्य नजदीक जाता है तो उनके कपड़े फाड़ने लगता है, वैद्य को मारने भी लगता है, किंतु वैद्य उसके अपराध को समझता नहीं है। वो जानता है ये पागल है, ये अभी बीमारी में है, उसको इस बात का ज्ञान नहीं है। तो जब एक संसार के माता पिता या डॉक्टर वैद्य भी किसी मूर्ख की मूर्खता पर ध्यान नहीं देते, तो माया में उन्मत्त जो मनुष्य है उसकी कोई क्रिया ज्ञानी महात्मा के सामने हो जाए तो ज्ञानी महात्मा क्यों ध्यान देंगे, वो अपराध मानते ही नहीं। वो अंदर से बिल्कुल मस्त रहते हैं, परमात्मा के स्वरूप में मग्न रहते हैं और अपने मन बुद्धि आदि को भगवान के अर्पित किए हुए रहते हैं। एक भगवान को छोड़कर उनका न तो कहीं चिंतन होता है न मनन होता है, इसी को ही मन बुद्धि अर्पित करने की बात बोलते हैं। तो भगवान सबके सुहृद है, अगर हम सबके सुहृद बने होते तो कम से कम परम दयालु भगवान के पास जाकर रोते और भगवान से कहते हैं, महाराज अमुक आदमी ये सारा संसार कष्ट में पड़ा हुआ, इस संसार का कष्ट दूर करो, परंतु हम तो हमारे दुख से भी अभी अपना पिंड नहीं छुड़ा पाते, अपने ही दुख के लिए रोते हैं। अपनी आत्मा की तृप्ति कर लेना, शांति लाभ उठाना, ये तो साधारण लाभ है। विशेष लाभ तो और ही है कि सबके कल्याण में लगे। दोनों ही बातें ठीक हैं, जब तक आत्म कल्याण नहीं होगा तब तक सबके कल्याण की बात कैसे होगी। ये बात ठीक है, बात गलत नहीं है, आत्म कल्याण भी करो, परंतु भीतर में एक भाव ये रहना चाहिए कि सबका कल्याण कैसे हो। ये एक बड़ी निराली चीज है। ये हमने आपको रहस्य को बता दिया कि भगवान के सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वामाम शांति मृच्छति का क्या रहस्य है। किसी पर फांसी का मुकदमा लग गया तो वह उसे छूटने के लिए बहुत कोशिश करता है, कितनों की खुशामद करता है, कितनों के पैरों पड़ता है, कितने ही वकीलों से मिलता है, कानून की पुस्तकों के अंदर इधर उधर कानून ढूंढने की चेष्टा करता है, छटपटाता है। उसके छटपटाहट से हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि संसार से मुक्ति के लिए हमारे अंदर कितनी छटपटाहट है। मुकदमा तो है, हम लोगों पर यमराज का मुकदमा चल रहा है, पैरवी करने वाला कोई नहीं है, वकील हमने बनाया नहीं है, और एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये इसकी फांसी है साहब, फांसी। तो भविष्य में जन्म न हो, दुखालय संसार में दुख के पात्र न बने, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ऐसा समझकर इसके लिए अपने को भगवान की खूब खुशामद करनी चाहिए। किसी को 6 महीने की जेल हो जाए, उससे उसकी भूख और नींद उड़ जाती है, वह उसे छूटने के लिए कितना प्रयत्न करता है। इतना प्रयत्न यदि 84 लाख योनियों से छूटने के लिए करे तो संभव है जरूर छूट जाए। 6 महीने की जेल तो शायद छूटे न छूटे, पर ये जेल तो इसकी छूट जाए। ऐसा मौका पाकर कल्याण नहीं हुआ तो अपने आप में एक बहुत बड़ी भारी लज्जा की बात है। मनुष्य का जन्म पाकर जो नाना प्रकार के पाप करे उनसे कुत्ते भी अच्छे हैं, उन्हें अपनी आत्मा को धिक्कार देना चाहिए। उन्होंने अपने माता पिता को कलंकित कर दिया। मनुष्य का जीवन पाकर कुत्तों की मौत मरे, ये कितनी लज्जा की बात है। मनुष्य शरीर में आए और अब कुत्तों के शरीर में चले गए। माता पिता कोई पत्थर पटकते तो वह भी काम तो आता। हम ऐसे जन्मे, ऐसे हमारे माता पिता के ऐसे जन्मे जो कोई काम नहीं आए। हमारी जगह कोई माता पिता के पत्थर पैदा होता तो कहीं काम तो आता, हम क्या काम आए। आप लोग ख्याल करो, तीर्थों में जाते हो, किसी ने चारों धाम कर लिए, किसी ने 3 धाम कर लिए, पर यह नहीं देखते कि हमारे आचरण और स्वभाव में कितना फर्क आया। घर में वैसी लड़ाई, वैसी तू तू मैं, वैसी ईर्ष्या, वैसा ही क्रोध, क्या हुआ। ठीक है तीर्थ गए, एक मन का एक संतोष हो गया, पर आचरण ठीक नहीं हुए तो तीर्थ में जाने का क्या फल मिला। आजकल तो लोग केवल भागते रहते हैं, फिरते रहते हैं। आगे के लोग तीर्थों में जाते थे, 8-10 दिन रहते थे, वहां भजन साधन सत्संग करते थे, तीर्थ के परमाणु उनमें आते थे, और आजकल तो केवल हाय हाय करके भागते हैं, आए गए सुबह आए शाम को रवाना। आजकल तो हाय हाय करके भागते फिरते हैं, इससे उनके आचरण कैसे ठीक होंगे। तीर्थों का जो प्रभाव है वो उनके अंदर कैसे बैठेगा। हम लोग उन्हें धिक्कार देते हैं, हम लोग उन्हें धिक्कार देते हैं, इसी प्रकार हम लोगों का स्वभाव भी वैसा ही बना रहा तो हमें भी लोग ऐसा ही कहेंगे कि इतने वर्षों से आप ऋषिकेश में सत्संग में जाते हो, भजन करते हो, आपको क्या फायदा हुआ। घर वाले लोग कहेंगे हमारा पैसा भी लगाया और तुमने यात्रा में कष्ट भी उठाया, ऋषिकेश में जाकर कमरा भी रोका और आचरण व्यवहार तुम्हारा वैसा ही है। उन लोगों के, हम लोगों के आचरणों के द्वारा उन लोगों में और ज्यादा अश्रद्धा पैदा होती है। तो हमारे आचरण से हम लोगों ने तो हमारा नुकसान किया, लेकिन उन लोगों के मन में सत्संग के भाव पैदा नहीं होने दिए, तो हमने उनका जो नुकसान हुआ वो भी फल हमको ही भोगना पड़ेगा। अरे ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि जो आपके परिवार में पीछे बचे हैं वो देखते हैं, अरे सत्संग में जावे हम जावे, पहले आपकी बार तो आप गए अब हम जाए, आपने तो अपना सुधार कर लिया हमारा सुधार कब करेंगे। घर में तो लड़ाई होनी चाहिए सत्संग में जाने की, लेकिन यहां तो लड़ाई और ही ढंग की होती है। जो लोग भजन की ओर आगे बढ़ना चाहते थे वे रुक गए हम लोगों के खराब व्यवहार को देख करके। वे लोग भजन ध्यान करके बेचारे मुक्त हो सकते थे, लेकिन देखा अरे सत्संग में कोई फायदा नहीं, उसको देख क्या हुआ, देखो हमारे घर में वो सत्संग करते हैं, क्या फायदा क्या फायदा। आपने बड़ी भारी रुकावट पैदा कर दी। इसलिए ऐसा समझ करके अपने व्यवहार को सुधारना चाहिए। शरीर मन बुद्धि हमारी है, उन्हें भगवान की तरफ लगाने में कठिन क्या बात है। कोई दूसरे से उधार लेके कुछ करो तब तो बात अलग है। अपने एक एक क्षण का हिसाब रखना चाहिए, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कौड़ियों के बदले में ऐसे अमूल्य जीवन को आप खो रहे हो, कैसी मूर्खता है। संसार के भोग पदार्थ कौड़ी से भी नीचे है और आपका जीवन का श्वास है ये हीरों से भी ज्यादा कीमती है। इन भोगों के पीछे इन श्वासों को आप लगाते हो, कैसी मूर्खता है। मनुष्य जीवन पाकर के यदि शरीर का केवल निर्वाह मात्र किया, शरीर को ही भोग दिया, आराम दिया, तो फिर पशु पक्षी भी भोग भोगते हैं और मनुष्य भी ऐसे ही पड़े, तो फिर क्या फर्क है। इसलिए भोगों को लात मारकर ऋषि मुनि पहले जिस काम में लगे थे उसी काम में लगना चाहिए, यही सत्संग का प्रभाव होता है। आपको एक रहस्य की बात और बताएं, अपने को ईश्वर का चपरासी मानना चाहिए। हम लोग ईश्वर के चपरासी बन जाएं तो जल्दी काम हो सकता है। ईश्वर का चपरासी कौन है? जो भगवान का चपरासी, ईश्वर का चपरासी भक्त है वो भगवान का चपरासी है। जो थोड़ी भी भगवान की भक्ति करता है वह भी भगवान का भक्त हो जाता है। इसलिए हर एक को अपने आप को भगवान का चपरासी समझना चाहिए। हम नाम के तो ईश्वर के चपरासी हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार में हमारे सुधार नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातों की इच्छा होती है, थोड़ी थोड़ी बातों में क्रोध आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों में लोभ आ जाता है, थोड़ी थोड़ी बातों का अहंकार करते हो। अरे ईश्वर की राजधानी में रहकर हम लोग क्यों डरे इन चीजों से। गवर्नमेंट का 10-15 रुपए महीने का चपरासी होता है, उसमें कितना पावर है कि करोड़पति की हथकड़ी में बेड़ी डालकर वो उपस्थित कर दे। जबकि हम ईश्वर के घर के नाम मात्र के सिपाही हो गए, तब ये काम क्रोध लोभ आदि हमको कैसे मार सकते हैं। जैसे कोई राज्य का चपरासी होता है उसको कोई कुछ नहीं कह सकता, तो हम भगवान के हैं तो हमको ये काम क्रोध लोभ आदि कैसे मारेंगे। अपने में साहस लाओ, हमारा इतना पावर और हुक्म है और फिर भी हम डरते हैं, ये तो ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। इन काम क्रोध लोभ आदि के हथकड़ी डाल करके भगवान के सामने ले जाकर खड़ा करना चाहिए। मालिक की आज्ञा का अर्थात ईश्वर का अपने सिर पर हाथ समझना चाहिए और काम क्रोध लोभ आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए कूच कर देना चाहिए। कूच करना माने आक्रमण करना चाहिए। भगवान के राज्य में रहकर यदि हम इन्हें नहीं मार सकेंगे तो भगवान कहेंगे अरे हमारे राज्य में आप सिपाही रहने लायक हो, तुम्हारी शूरवीरता है, तुम कायर हो, भगो यहां से, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए वीरता के साथ इनको मार हटाना चाहिए। संसार में महात्मा का सहारा मिलने पर वह चाहे सो काम कर सकता है, महान बन सकता है, फिर ईश्वर का सहारा पाकर डरे तो ये तो भगवान के चपरास को कलंकित करना है। काम क्रोध लोभ मोह हमें जूता मारते हैं और हम खाते रहते हैं, बड़ी शर्म की बात है। अरे हम भगवान को प्रसन्न करने वाले हैं, भगवान के राज्य में हैं, भगवान हमको देख रहे हैं, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हमारे जूता मारते हैं, भगवान को कितना दुख होता होगा। जैसे कोई चोर है और माता पिता बड़े साहूकार वहां पर खड़े हैं और दुनिया उनको चोर समझ करके जूता मारती है तो माँ बाप क्या करेंगे? माँ बाप क्यों बोले बीच में, भाई अब हम क्या करें, चोरी ये करता है तो ये पिटेगा, हम क्या करें? जब तुम काम क्रोध आदि से पीटे जाओ तब तुम भगवान को खबर कर दो, हे महाराज हमारे पास जो फौज है वो फौज कम पड़ गई, आप और फौज भेजो, और फौज भेजो। तो भगवान फौज देकर के नष्ट कर देंगे। अब भगवान कौन सी फौज देंगे? हमारे अंदर सत्संग के बड़े अच्छे अच्छे भाव भगवान पैदा कर देंगे, पर कम से कम काम क्रोध लोभ आदि को आप अपना शत्रु तो समझो, आप इनको चोर तो समझो, आप तो इनके साथ चिपक चिपक करके रस भोग करके इनके साथ तुम मित्रता गांठे बैठे हो। जब चोर को तुम मित्र मान के बैठे हो तब फिर हटाने की बात तो कैसे करोगे? तो हम लोग चपरासी होते हुए भी काम क्रोध से पीटे जाते हैं, लज्जा की बात है। जैसे वायसराय को ये मालूम हो जाए कि अमुक थानेदार चोर डाकुओं के द्वारा पिटा गया तो वायसराय को बहुत बुरा लगता है, फौज भेज करके चोर डाकुओं का दमन करता है। इसी प्रकार से भगवान को पुकारना चाहिए, परमात्मा की दया अपने पर है यह हरदम मानना चाहिए, सबको मानना चाहिए, सब पर मोरी बराबरी दया। भगवान दया करने में कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, इसलिए भगवान की दया को पकड़ते हुए काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं को पराजित करने का प्रयास करना चाहिए। परम पद का सरल मार्ग आपको ये बता दिया, इस मार्ग पर आप बड़े आसानी से चल सकते हैं। नारायण नारायण।